दोस्तों शाम का वक्त है, चाय की गहरी तलब मिटाने दो राहगीर मेलबर्न के एक कैफे में घुसते हैं। देखा तो कवियों और शायरों का एक समूह चाय के साथ चीयर्स कर रहा है। 20-25 साल के नौजवान कुछ भारत से और कुछ अन्य देशों से साथ बैठकर कविताओं की चुस्कियां ले रहे हैं। उन्हीं के बीच है निशांत, हाथ में कलम, सामने है माइक और माइक के सामने उनकी वाह वाह करती ऑडियंस। लिखने को तैयार, पढ़ने को तैयार और कई बारी अपना लिखा हुआ पढ़ने को तैयार। हिंदी और उर्दू के दिग्गज लेखक, साहित्यकारों, कवियों और शायरों का जादू ऑस्ट्रेलिया के कभी किसी कैफे में तो कभी किसी शो में या कभी किसी गली में जिंदा रखने और निखारने की कोशिश करते हुए निशांत। स्नैपचैट के जमाने में शायद आज भी खत लिखते हुए निशांत। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आंखें नम हैं। क्यों खामखा हम इश्क को बदनाम करते हैं, जज्बात जगाने के लिए क्या शब्द कम है। तो सबसे पहले तो निशांत, आपका आज SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है।
जी बहुत शुक्रिया।
तो निशांत, मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश तो की है कि मैं आपका परिचय दे सकूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपने अंदाज में बताएं कि आप आखिर हैं कौन और क्या करते हैं।
मैं कौन हूँ? नाम जैसा कि आपने बताया निशांत है। कुछ 3 साल पहले मेलबर्न आया था बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ने। खास तौर पर कुछ वजहों की वजह से मुझे तबादला करना पड़ा डिप्लोमा ऑफ फोटोग्राफी में, क्योंकि रुझान भी काफी उसकी तरफ था। लिखना कहीं ना कहीं जहन में था, कोशिश थी लिखने की, जो जज्बात है उनको सामने लाने की। कुछ लोग होते हैं जो नहीं कह पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कह पाते हैं। मेरा एक शेर है वो कुछ ऐसे है कि कुछ लोग करते हैं जुल्म कागजों और किताबों पर, सब लोग नहीं चाहते कि लाशें बिछें।
क्या बात।
तो कुछ ऐसा है कि अपने जज्बातों को शब्द देना कहीं ना कहीं कला भी है और बहुत मुश्किल काम है। मैंने लिखना शुरू किया कुछ 2019 के दरमियान, और वहीं से शुरू हुआ पढ़ना लिखना, क्योंकि घर में पापा जो हैं मेरे, पिताजी मेरे हिंदी के अध्यापक हैं और हिंदी के विद्यार्थी भी हैं खुद। तो जब उनकी नौकरी लगी अध्यापक के तौर पे, तो उनसे किसी बुजुर्ग ने आके पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कहते कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और अध्यापक भी हूँ। तो वो बुजुर्ग उनसे कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी और हिंदुस्तान दोनों की सेवा कर रहे हैं।
क्या बात है।
तो घर पे कहीं ना कहीं गीतांजलि से लेके प्रेमचंद की गोदान तक सब कुछ मौजूद था। काफी किताबें पढ़ी, लेकिन खास तौर पर जॉन एलिया पसंद आए। उर्दू और हिंदी भाषा दोनों का ही जो घोल है कहीं ना कहीं वो खरी बोली से आता है, दिल्ली की खरी बोली से, और वो दोनों साथ साथ गंगा और जमुना की तरह चलती हैं, तो उनको तुम अलग नहीं कर सकते। तो जॉन एलिया कुछ इस तरीके से पसंद आए कि उनका अंदाज और उनका कहने की जो कहने का तरीका था वो बहुत ही आसान था। उन्हें एक इंटरव्यू में, एक मुशायरे में उनको कहा गया था कि आसान भाषा के मुश्किल तरीन शायर, तो वो थे जॉन एलिया। मुझे उनकी तरफ रुझान ज्यादा लगा, उन्हें पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। यहाँ आया बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स में, उसके बाद डिप्लोमा ऑफ फोटोग्राफी 1 साल तक मैंने पढ़ा। तो कला की तरफ कहीं ना कहीं रुझान था। तरीके मिले, जरिए मिले कि कहाँ से कहाँ जाना है, फिर एक कैफे में जगह मिली कि हाँ यहाँ पढ़ सकते हैं
जी।
और कलाकारों को कुछ नहीं चाहिए होता सुनने वालों और देखने वालों की उससे, कि उन्हें सिर्फ सुनने वाले और देखने वाले चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का शब्द की रिकग्नाइज हो सके। तो मैं बस यही हूँ, मैं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ लिखने की, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हाँ
जी, तो आपने अभी जॉन एलिया का नाम लिया
जी,
आपके सबसे मनपसंद लेखकों में से एक है जैसा आपने बताया, तो उनका लिखा हुआ कुछ अगर आप हमें अपने अंदाज में सुना सके।
उनके कुछ शेर हैं जो मुझे सीधा दिल और जहन में मेरे घर कर गए थे। बहुत ही आसान भाषा और बहुत ही आसान कहने का लहजा था। एक शेर है उनका, वो यूं कहते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या।
क्या बात।
बहुत ही आसान सी शब्दावली है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। हम सब लोग जब किसी चीज से हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम आदतन आसमान की तरफ देखते हैं। कोई रहता तो नहीं है ना वहां पे, कहते हैं कि खुदा रहता है, भगवान रहता है, बट फिर वही जॉन ने इस तरीके से कहा। उनका एक और शेर की, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। काफी ऐसे शेर हैं, उनका हाल ही में एक शेर मैंने पढ़ा था कि वो शख्स अभी तक कर रहा है वफा का जिक्र, काश उस जुबान दराज का कोई मुंह नोच ले।
क्या बात है।
तो मैं कहता हूं कि बहुत गलत होगा ये कहना, बट मेरे कहने का तरीका ये है कि अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके के वाहिया शायर हैं तो वो जॉन एलियट हैं, क्योंकि वो इस तरीके से बातें कहते हैं कि वो सीधा दिल पर चुभती हैं।
बिल्कुल जी। तो इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम ये खास पेशकश वैसे विश्व हिंदी दिवस पर लेकर आए हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता है ना, वो मुझे लगता है दो एक्सिस की तरह होता है कहीं ना कहीं, कि वो दूर भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत होती है या आपस में मिलते हैं तो बाकी लोगों को काफी तकलीफ होने लग जाती है कि अरे, अब हर लेखक के बारे में ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि दोनों तरह के लेखक हमने देखे हैं। कई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदी को उसके बिल्कुल सटीक मूल रूप में ही बोला जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कई सारे शायर, लेखक, साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन दोनों भाषा के मिलन के साथ ही अपना पूरा पेशा बनाया है, अपना नाम बनाया है। तो आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं?
देखिये, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिंदी और उर्दू गंगा और जमुना की तरह हैं, तो उन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं, उनकी और वो दो भाषाएं ऐसे हैं कि जिनके शब्द मिलते जुलते हैं। कहने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, अदब शायद एक भाषा में ज्यादा हो, एक भाषा में कम हो, सरलता किसी भाषा में कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट वही है कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये तो वही बात होगी ना कि आप दूध में पानी मिलाएं और फिर कहें कि दोनों को अलग अलग करके दिखाएं, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि भाषा सिर्फ एक तरीका है अपनी बात समझाने का। किसी भाषा की निंदा ना करते हुए मैं कहूंगा, अगर अंग्रेजी भाषा का अगर हम उदाहरण लें, तो अंग्रेजी में हम एक शब्द यूज करते हैं यू, और हिंदी में उसी शब्द के तीन मतलब हैं, तू, तुम और आप। तो अगर कोई किसी को सिर्फ यू कहता है तो उससे कुछ जाहिर नहीं होता है कि क्या कह रहे हैं आप, बल्कि हिंदी में अगर आप देखें तो तू बेइज्जती मानी जाती है, तुम थोड़ा सा आदर और आप बहुत ज्यादा आदर, जो कि बड़ों या बुजुर्गों का होता है। तो भाषा सिर्फ एक माध्यम है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, बस उनके असूल कुछ अलग हो सकते हैं, पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। अपनी बात जब तक आप कह रहे हैं तब तक सब कुछ अच्छा है।
तो निशांत, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सबको बताएं कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं लोगों को लग रहा होगा कि आपने जिंदगी काफी जी है, लेकिन आप मुझसे भी छोटे हैं।
जिंदगी जीने का उम्र से तो आई थिंक मेरे
नाता को नहीं है।
नाता कोई नाता नहीं है जिंदगी जीने का उम्र से। तजुर्बे जो हैं वो किसी भी उम्र में आ सकते हैं। मुझे शायद कुछ मसलों या कुछ मुद्दों पर ज्यादा तजुर्बे मिले कम उम्र में। उम्र बताना नहीं बताना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर बता भी दूंगा तो वही है कि लोग फिर आपको इस नजर से देखते हैं कि ये कम उम्र का है या ये ज्यादा उम्र का है। तो उम्र का कुछ मतलब होना नहीं चाहिए जब किसी से आप मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, आप उसी सम्मान से मिलें, उसी आदर से मिलें और उनके कला और उनकी कौशल को देखें कि कितना कौशल है उनमें। जी,
सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हम देखते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन इंडियंस ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और देश में जाते हैं, जब वो रहते हैं भारत से बाहर किसी भी अन्य देश में, तो कई कारणों की वजह से उनका जो अपनी भाषा के साथ एक संबंध होता है, एक लगाव होता है, वो छूट जाता है, कम हो जाता है। लेकिन मैंने देखा है अपने दोस्तों के बीच भी कि लोगों को 30 के आगे की गिनती नहीं आती है। सच बताऊं तो व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई यहां पर बहुत पहले आ गया है तो कई कारण हो सकते हैं कि वो अपनी भाषा नहीं सीख पाए, लेकिन मैंने देखा है कि ये लैक ऑफ बेसिक नॉलेज को काफी ग्लोरिफाई किया जाता है। ये लोग कहते हैं क ख ग नहीं आती है, ये तो ऐसा हो गया कि ABCD नहीं आती है, लेकिन वो जब हम कहेंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वर्णमाला नहीं आती है बहुत लोगों को, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आज भी हिंदी हो गई या उर्दू हो गई या जो रीजनल भाषाएं भी हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको एक अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है और अंग्रेजी को इतना ऊपर क्यों देखा जाता है?
मुझे लगता है ये हम ही लोगों ने इसका बात का बतंगड़ बना लिया कि अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत अच्छी है या कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक माध्यम है, वो क्योंकि ग्लोबली रिकग्नाइज है। अगर मैं अपने व्यक्तित्व से या अपने सोचो समझ से मैं बोलूं तो बहुत शर्म की बात है जो कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती या गिनती नहीं आती, आपको आनी चाहिए। और उसका कोई बहाना बनाए कि हम सीख नहीं पाए, तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। मुझे अगर क्योंकि मेरा रुझान उर्दू की तरफ थोड़ा ज्यादा है, तो मुझे पढ़नी और लिखनी नहीं आती है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मैंने अभी लिखनी शुरू की, समझनी शुरू की, तो उसकी कोई उम्र नहीं है सीखने की। अगर आप वो बहाना दे रहे हैं कि नहीं, हम हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम नहीं कर पाए। अगर अटल जी विदेश में जाके, संयुक्त राष्ट्र में सभा में जाके अगर अपना उपदेश जो है, अपना भाषण हिंदी में दे सकते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें सीखना चाहिए, हमें मान महसूस होना चाहिए कि हम वो बोल पाते हैं। अगर ऑक्यूपेशनल ट्रेड से देखें कि जो प्रोफेशनल लेवल्स हैं, उसमें अंग्रेजी बहुत जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे उस नजरिए से देखा जाता है कि ये गवार है या इसे अंग्रेजी नहीं आती है
जी।
तो अगर कोई अपनी बात रख रहा है और अगर उसे दूसरी भाषा नहीं आती है, तो उसमें कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। अगर विदेशी हमारे देश में आते हैं, फिरंगी, पुरानी भाषा की फिरंगी आते हैं, तो हम उनसे नहीं कहते कि आप हिंदी सीख कर आए। वो आते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं, वो समझ लेते हैं। बहुत से ऐसे विदेशी लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। और अगर हम यहाँ आते हैं, जैसे मैं यहाँ आया या आप यहाँ आए, तो हमें अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप हमारी भाषा सीख कर आए। तो वो बस एक मान्यताएं हैं कि ये करना जरूरी है, और अगर हम ही ऐसा नहीं करेंगे कि हम ही नहीं बोलना शुरू करेंगे तो कौन करेगा? तो वो अगर इतनी बड़ी हस्तियां होकर कर सकते हैं, तो तुम क्या अपने घर में नहीं बोल सकते?
निशांत, कला और भाषा में भी मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा एक जैसे कहते हैं ना, ट्रेंड को बदलते हुए देखा है। जैसे पहले स्लैम पोएट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर थी क्योंकि इंग्लिश में होती है, नया था कुछ उसमें, है ना। और कॉमेडी में भी हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफी ऐसे हास्य कलाकार रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश में चीजें करी थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो हिंदी भाषा का जो कंटेंट आया है उसका कोई जवाब नहीं है। जैसे अगर आप जाकिर खान को देख लें, है ना, अनुभव बस्सी को देख लें, भारत का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल आज के डेट में दोनों भाषाओं में चल रहा है
जी।
है ना। तो ये जब ऐसी चीजें आती हैं तो हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो इंग्लिश के अलावा और भाषाओं में भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, खासकर की हिंदी, तो किस तरह से ये एक प्रोत्साहन हो सकता है?
एक उदाहरण मेरे पास है महीप सिंह जी का, जो कि अभी अभी बहुत प्रचलित हुए हैं अपने डायलॉग्स की वजह से। वो उस जमाने से कर रहे हैं जब कोई हिंदी भाषा में कॉमेडी करता नहीं था। जाकिर खान बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है, शायर हैं, खुद लेखक भी हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत मान करता हूं उनका। बहुत ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता नहीं निजी तौर पर, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि हाँ, जाकिर भाई। अगर महीप सिंह जी की बात करें तो उन्होंने उस जमाने से कॉमेडी शुरू की है जहाँ पे अंग्रेजी ही सिर्फ थी। उन्होंने शुरू की हिंदी में, धीरे धीरे उन्हें मौके मिले। अब पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये बस यही है कि किसी ना किसी को तो कहीं ना कहीं से शुरू करना था। और जब बूंद बूंद करके गागर भरती है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बस टूटी खोली और सारा का सारा पानी इकट्ठा आ जाएगा। वो कभी ना कभी तो एक बूंद आएगी, फिर ही वो गिरेगा। तो अगर एक बूंद आई, किसी ने शुरू किया, तो उनको देख के, उनसे उत्साहित होके या उनसे प्रेरणा लेके कोई और भी वो करेगा, फिर कोई और करेगा, उन्हें देख के फिर बच्चे भी करेंगे, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। और जाकिर खान जस्ट माइंड ब्लोइंग, उनका कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से बस्सी करते हैं,
अगले महीने मेलबर्न आ रहे हैं वो, ऑस्ट्रेलिया भर में उनका टूर है, काफी लोग बहुत ही ज्यादा आस लगाए बैठे हैं
जी। वो बहुत प्रचलित हुए हैं, वो सिर्फ कॉमेडियन या शायर या लेखक नहीं है, वो कहानीकार है। उन्हें लोगों की नब्ज पता है कि कहाँ से हंसी निकालनी है, कहाँ से उनके आंसू पर होने हैं।
बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग मन से लिखते हैं और कुछ लोग मन का लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि लेखक दो तरह के होते हैं, एक जो अपने आसपास के वातावरण से चीजें उठाते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर कुछ नया बनाते हैं, और एक जो अपने अंदर से जो उनके साथ घटी हुई घटना होती है कोई, या जो उनकी आप बीती होती है, उससे कुछ ना कुछ टटोल कर निकाल कर आपके सामने रखते हैं। तो आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में डालेंगे?
दोनों श्रेणियां साथ साथ चलती हैं। कि अगर आपके साथ कुछ घटा है तो वो शायद आपके वातावरण की वजह से है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया है, वो कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा आती है, चाहे वो प्रकृति हो या इंसान हो। मेरा लिखने का तरीका कुछ साथ साथ ऐसे घुला मिला सा ही है कि जो मैं महसूस करता हूँ मैं वो भी लिखता हूँ, जो मैं देखता हूँ वो भी लिखता हूँ। पॉलिटिकल हो जाएगा बट मैंने लिखा है सरकार के खिलाफ भी। खिलाफ इतना बड़ा लफ्ज नहीं है, इतना बड़ा शब्द नहीं है कि मैं खिलाफ कहूँ, पर जो चीजें मैंने देखी,
असहमत होकर लिखा,
असहमत होकर जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी उनके उनके लिए लिखा, जो होनी चाहिए थी उनके लिए लिखा। तो मेरा मानना यही है कि मैं अगर लिखता हूँ तो वो एक ऐसी श्रेणी है कि जिसमें जो लोग महसूस करते हैं, जो मैं महसूस करता हूँ, वो कभी ना कभी फूट के बाहर आता है। मेरा शायद शब्दों में आता है तो मैं लिख देता हूँ, किसी का आवाज में आता है तो वो रो लेते हैं, वो गा लेते हैं, तो अलग। किसी का अगर रंगो रूप से आता है तो फिर वो कला बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं हाँ इसी एक नजरिए से देखता हूँ चीजों को
जी।
वो घुला मिला एक मिश्रण है उनका।
आपने इस साक्षात्कार की शुरुआत में ही ये कहा था कि आपके अंदर ही कहीं ना कहीं था लिखने का
जी।
लेकिन आपने ये भी बताया कि आपके पिता का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आप पे रहा है, प्रभाव रहा
जी।
है। तो सवाल यही होगा कि माँ बाप कैसे इस पूरे संदर्भ में एक तरह से रोल प्ले कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलें कि आप अपनी भाषा से जुड़ें, और पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इन चीजों में और किस हद तक रहता है?
माता पिता का रोल है, बहुत अहम है इन सब में कि कैसे वो चीजों को देखते हैं या कैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं। मैं पला बड़ा अपनी नानी के घर, तो जो मेरे नाना है वो अंग्रेजी के अध्यापक थे, मामा मेरे मैथ्स पढ़ाते थे, मम्मी जो मेरी हैं वो इंग्लिश पढ़ाती थी, पापा हिंदी पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो मेरे अंदर है कि कहाँ से चीजें आती हैं, वो कहीं ना कहीं घर से ही होता है। आप अगर बहुत अच्छे इंसान बन रहे हैं तो वो आपकी परवरिश होगी। अगर बुरे हालात होते हैं, बुरा इंसान नहीं होता है, लेकिन अगर बुरे हालात या बुरे आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके वातावरण का ही आप पे इफेक्ट पड़ेगा। माता पिता का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें पालना है, उन्हें तहजीब सिखाना, उन्हें आदर करना सिखाना, वो सब कुछ उसमें शामिल है। अपनी भाषा और अपनी जुबान के प्रति अगर उनका प्यार देखने को मिलता है तो वो भी वहीं से मिलता है। आज भी अगर मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलता हूँ तो वो मेरा खरी बोली या हरियाणा की जो भाषा है वो आ जाती है। जैसे ब्लैक और ब्लैक बोलते बोलते कभी ब्लैक निकल जाता है, तो वो चीजें हैं, वो अंदरूनी है, वो कहीं ना कहीं आप जब बड़े होते हैं तो वो आपके साथ ही चलती हैं। माता पिता कोशिश कर सकते हैं किसी को सिखाने की, अपने बच्चों को सिखाने की या किसी दूसरे को सिखाने की, पर किसी के सीखने की इच्छा या किसी में सीखने की इच्छा पैदा करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मेरे अंदर भी अगर लिखने की बात मैं करूं तो वो धीरे धीरे आई। उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि तुम लिखो या कुछ और करो, पर जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो था कि किसी एहसास या किसी जज्बात ने वो बाहर निकाला, तो मैंने लिखना शुरू किया। जी,
तो ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जब मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने एक कम्युनिटी बना रखी है जहां पर आप साथ लिखते हैं, सिखाते हैं एक दूसरे को, है ना। और ये जो पूरी एक प्रक्रिया होती है कि लिखना और पढ़ना दोनों में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो कहीं ना कहीं लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं हिंदी में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप अपने हुनर को और निखार सकते हैं, या फिर अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस चीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा इस कम्युनिटी के बारे में बताएं कि आप लोग आपस में मिले कैसे और आप करते क्या हैं।
जी, मैं सबसे पहले मिला द मानसिक प्रोजेक्ट पे, जो कि मेलबर्न के ही एक रेस्टोरेंट में था। मुझे कहीं ना कहीं से उस चीज का पता चला कि यहाँ पे ओपन माइक पोएट्री हो रही है
जी,
तो मैं बस वहां के लिए निकल दिया। मैंने पढ़ा और मुझे प्रोत्साहन मिला कि हाँ आप अच्छा पढ़ते हैं। उसके बाद वहां मैंने कुछ लोगों को देखा, लोग एक तो मुझे इस शब्द से नफरत है कि लोग कहना जो अपने होते हैं वो लोग नहीं होते हैं।
अरे वाह।
तो
पर हर कोई अपना भी नहीं होता है।
हर कोई अपना नहीं होता है, लेकिन जो अपने होते हैं उन्हें फिर लोग कहना कि मेरे कुछ अजीज लोग हैं, वो बहुत ही बदनसीबी कह लो या बेइज्जती का काम है। जो अपने होते हैं वो लोग हो ही नहीं सकते। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं क्या शब्द उनके लिए प्रयोग करूं, पर हाँ, तो वहां मैंने कुछ शख्सियतों को देखा जो पढ़ रहे थे। उस पोइट्री इवेंट के बाद मैं उनसे तकरीबन 6 महीने तक नहीं मिला, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, हमारा कुछ नहीं था, तो मैं फिर से कट ऑफ हो गया। मैं काम करता था और मैं सोचता था, मैं लिखता था, पर कहीं ना कहीं एक वो जंग थी खुद में कि हाँ, मुझे कोई सुनने वाला चाहिए जो मुझे सुने। फिर कहीं ना कहीं से मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम की एक रील भेजी, मेरी दीदी ने, उन्होंने कहा कि चाय शाय कैफे है फिट्रोय में, तो वो ओपन माइक पोएट्रीज और इवेंट्स करवाते हैं, तो वहां जाके तुम पढ़ो। तो मैंने देखा और फिर मैं यूं ही चला गया। तो अक्षय सिंधवानी जो कि होस्ट रहते हैं वहां के, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, और वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें कला से मोहब्बत है, चाहे वो लिखने की हो, पढ़ने की हो, गाने की हो, कुछ भी। वहां मैं गया, पहली दफा गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया तो कुछ और लोग मिले, चौथी बार में एक शख्स मिला, हमजा भाई, जो कि खुद पाकिस्तान से हैं, जो उर्दू, फारसी, हिंदी, बहुत सारी भाषाएं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यूं लगा कि यहां आने से चाहे मुझे पढ़ने में या लिखने में कुछ मिले ना मिले, या मैं कितना आगे बढ़ू ना मिलूं, बट मुझे ऐसी शख्सियत मिलेगी जिन्हें मैं अपने साथ लेकर चल सकता हूं, या जिनके साथ मैं चल सकता हूं, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने अपने दोस्त हरमनन के साथ एक कम्युनिटी शुरू की जिसका नाम है साउथ एशियन ऑस्ट्रेलियन क्रिएटिव्स। उसके दौरान हमने हमारी पहली इवेंट करवाई शब सुखन, उर्दू का लफ्ज है शब सुखन, यानी कि पोइट्री की इवनिंग या कविताओं की या शायरी की शाम। उसमें जिनसे भी मैं मिला पिछले 7-8 महीनों के दौरान, उन्होंने पढ़ा, अपना कलाम पेश किया। फिर से हमने ये शुरू किया कि हम चाय शाय पे कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिसंबर में हमने शाम जॉन एलिया करवाई, अभी 31 जनवरी को चाय शाय पे शाम राहत इंदौरी है। तो वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी ऐसी बन गई है जिन्हें शायरी, भाषा और कला से मोहब्बत है, और जिन्हें कला से मोहब्बत है वो सब लोग मेरे अपने।
तो निशांत, आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगी कि हुनर है, जज्बा भी है, कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट टैलेंट भी है आप में, लेकिन इन सब चीजों का असल मतलब क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अपनी भाषा जब सामने बोलते हैं लोगों के, खुशी मिलती है जब अपनी कला पेश करते हैं लोगों के सामने, खुशी मिलती है जब लोगों के जज्बात जो वो नहीं कह पाते अगर हम वो कह पाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो चित्र से हो, शायरी से हो, कलाम लिखने से हो, लेखन से हो, या किसी भी चीज से, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ अहमियत है, हमारी शायद यही अहमियत है कि हम लोगों के भावों को पेश कर सकते हैं लोगों के सामने।
वो कहते हैं ना कि किसी को सोना चाहिए, किसी को चाहिए सोने की बालियां, मैं तो सिर्फ अपनी बताता हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए लोगों की तालियां।
वाह, बहुत।
तो वो शायद आपके लिए ही कहा गया है।
मुझे तालियों की तलब नहीं है, मुझे सुनने वालों की ज्यादा जरूरत है, जो सुनना चाहते हैं। तालियां मिले ना मिले, तवज्जो मिले ना मिले, उसका कुछ ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। पर जब तक लोग आपको समझ ना सकें, या जब तक आप लोगों को ना समझ सकें, उसकी कोई जरूरत नहीं कि तालियां बजाए। कुछ ऐसी कविताएं भी होती हैं जिनमें तालियों की जरूरत नहीं होती, वो बस आपको समझाने के लिए, या वो बस आपके भाव समझाने के लिए, आप पेश करने के लिए होती, तो तालियां इतनी अहमियत नहीं रखती। ये कविता मेरे पिताजी ने लिखी है लॉकडाउन के दौरान, कोविड में, जो कि मानवता पर जो आन पड़ी थी उस पर आधारित है। नाम है संकट की घड़ी, पिताजी का नाम है राजेंद्र सिंह। मुसीबत बड़ी है, संकट की घड़ी है, मुसीबत बड़ी है, संकट की घड़ी है, मानवता के सिर पर आन पड़ी है, अटे पड़े हैं शमशान, संवेदन शून्य हो चला इंसान, कंधे बिन लाश खड़ी है, कंधे बिन लाश पड़ी है, ममता लाचार खड़ी है, मुसीबत बड़ी है, संकट की घड़ी है,
मानवता के सिर पर आन पड़ी है। लाशों पर सियासत गर्म है, हुक्मरानों को आती नहीं शर्म है। आदमी हो गया प्रकृति से बड़ा, आज निकल चुका ये भरम है। मुसीबत बड़ी है, संकट की घड़ी है, मानवता के सिर पर आन पड़ी है। काला बाजारी दवाओं की बोली लगने लगी हवाओं की, छिड़ी जंग इंसान और भगवान की, चांदी हो गई शैतान की। मुसीबत बड़ी है, संकट की घड़ी है, मानवता के सिर पर आन पड़ी है। इसके बाद एक कविता है प्रमोद तिवारी जी की, नदियां धीरे धीरे बहना। नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर की बहना नदिया, गागर से के कहना नदिया, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाओ में दीवार, रस्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार, सीमाएं क्या होती हैं, कैसे तोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं, सबको समझाना नदिया, सीमाओं में भी है विस्तार, साधो ना लहरों पर तलवार, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार, सागर के घर सब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, किरने सिर पर नाचेंगी, सूरज का खत बांचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार, नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट से कहना, मैं ही हूँ बादल का अवतार, फिर मैं गाऊंगा गीत मल्हार। आज की आखिरी कविता कविता नहीं है, एक छोटी सी नज्म है, जो मेरा संदेश है जो लिखते हैं उनके लिए, जो लिख रहे हैं, जरा रुको, गौर करो और सोचो, गौर करो और सोचो, लिखने से पहले लिखने के बाद, कागज कलम के बदन ना चलनी करो, मत लिखो कुछ भी अगर जुबान की कीमत नहीं जानते, मत लिखो कुछ भी अगर शब्दों का वजन नहीं पहचानते, मत करो ऐलान दुनिया भर में कि मैं लिखता हूँ मैं लिखती हूँ, कलम उठाओ और घोंप लो अपने सीने में, अगर जमीर मर गया है तुम्हारा, मगर झूठ मत लिखो, जो लिख रहे हैं जरा सोचो, जरा रुको, फिर सोचो, लिखने से पहले और लिखने के बाद।
चलिए निशांत, आपका आज SBS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बातचीत में बहुत मजा आया होगा।